श्री कृष्ण शरणं समस्त जगतां कृष्णं विना का गतिः कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलं कृष्णाय कार्यं नमः कृष्णात्रस्यति कालभीमभुजगो कृष्णस्य सर्वं वशेत् कृष्णे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो कृष्ण त्वमेवाश्रयः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण को सादर दंडवत प्रणाम, उनके पदकमल में अर्पित करता हूँ। जो सारे भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं के आश्रय हैं। ऐसे जोड़ देना, थोड़ा मुझे चुकना पड़ेगा, ऐसे और नम्र बनना पड़ेगा हमको। कृष्ण को छोड़कर इस दुनिया के जीव को और क्या गति वो खोज सकता है? क्योंकि इस दुनिया के सब जीव जो भटक रहे हैं, अमेरिका जाए, लंदन जाए, जर्मनी जाए, अंततो गत्वा उनको मृत्युशया पर ही लेटना पड़ता है। और भगवान बोलते हैं कि मृत्यु सर्व हरश्चाहम, ऐसे गीता में बोलते हैं भगवान है। मैं मृत्यु के रूप में आकर, काल के रूप में आकर सब कुछ छीन लेता हूँ, तो अंततो गत्वा कृष्ण के ही शरण में जाना पड़ता है हर जीव को। हालांकि कोई बोलेगा मैं मानता हूँ भगवान को, नहीं तो नहीं मानता हूँ। इसलिए बताते हैं कृष्णम बिना का गति ही, कृष्ण को छोड़कर और क्या गति है, कल्याणमय गति क्या है जीव के लिए। बुद्धिमान लोग जिंदा रहते समय शरण ले लेते हैं, मूर्ख लोग मृत्यु पर्यंत शरण नहीं लेते हैं, लेकिन मृत्यु के समय झुक जाते हैं, पूरा लेट ही जाते हैं, नीचे उठ नहीं पाते हैं। इसलिए बताते हैं कृष्णम बिना का गति, कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण के नाम इतने शक्तिशाली है, सिर्फ उनके नामों का उच्चारण करके ही एक जीव को सब तरह के कलमशों से ऊपर उठाया जा सकता है। पतित से पतित जीव, इतना तक कि मनुष्य ही नहीं, जानवर, पंछियां इत्यादि को भी भगवान के नाम के द्वारा जगाया जा सकता है, इतना शक्ति है उनके नाम में। और उनके कार्यकलाप बहुत मधुर हैं, क्योंकि उनके हर कार्य इतना शुभ प्रदान करने वाली है। उदाहरण के लिए जब वो मुरली बजाते हैं, सब जीवराशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे हिरण, मोर, गाय और बछड़े और पंछियाँ और बंदर और सब अनेक प्राणियाँ कृष्ण की ओर मुड़कर उनकी उनकी दिशा में उनके निकट आकर उनकी मुरली बाज को सुनते हैं। हम लोग कभी कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, हिरण हमको देखकर दूसरी दिशा में भागता है ना? किसने देखा है आप लोग कहीं गए, किसी जू में गए और आपकी ओर आ गया कोई हिरण, आपके आकर आपकी गोद में आकर बैठ गया कोई हिरण, आपने कभी देखा है? सिर्फ कृष्ण के संबंध में हम देखते हैं। जब कृष्ण मुरली बाज मुरली को बजाते हैं, तभी सब हिरण उनके निकट आते हैं, इस तरह तो आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान की मुरली बजाना बहुत आकर्षक है, वो युद्ध भूमि में खड़े होकर भगवान जब पार्थ सारथी बनकर रथ को हांक, एक घोड़ों को हांकते हुए रथ को चलाते हैं, उस दृश्य को देखकर भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये सबसे सुंदर दृश्य है। भगवान अपने ही परम भक्त अर्जुन के दास बनकर उनके घोड़ा गाड़ी उनका रथ चला रहे हैं। लेकिन इसमें अद्भुत बात क्या है, उस युद्ध भूमि में उपस्थित कोटानुकोटि सैनिक लोग जो युद्ध में शामिल होकर मर मिटने वाले थे, सब खून का बड़ा नदी बह रहा था उधर, फिर भी हर एक सैनिक को परव्योम नाम के जो वैकुंठ का प्राप्ति हो गया, ऐसे वर्णन आता है भागवत में। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्र पूता पदमापुरस्य। भगवान पार्थ जो अर्जुन को युद्ध में लगाकर जब तीर चलाया अर्जुन के द्वारा, अर्जुन के हाथ से मारे गए सब सैनिक लोग भगवान कृष्ण को देखते देखते पवित्र होकर वो उनको भगवत धाम प्राप्त हो गया, ऐसे बताया गया भागवत में। क्योंकि एक ओर अर्जुन के तीर चलाने से उनके अंदर जो भी पाप कर्म का वंजन था, कर्म फल था, वो सब मिट गया, पूरा बाष्प हो गया, वो खत्म हो गया वो। क्योंकि अर्जुन के जो बाण थे उसको चलाने के लिए आदेश किसने दिया था? हाँ, कृष्ण ने दिया था। इसलिए कृष्ण के आदेशानुसार चलाया गया तीर से, उनके सब पाप कर्म का फल खत्म हो गया। एक ओर से पाप कर्म फल खत्म हो गया, दूसरी ओर वो लोग कृष्ण को देख रहे हैं प्रेम से, क्या होगा नतीजा उसका, उनको भगवत नाम प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान का एक नाम है हत अरि गतिदायक। अपने अरि का मतलब है दुश्मनों को मारकर उन्होंने भगवत नाम प्रदान किया उनको। इस दुनिया में है क्या कोई किसी को मारकर कुछ अच्छा कर सकता है उसके? लेकिन इसलिए भगवान के कार्य को अद्भुत कार्य बताया गया है। इस तरह ऐसे भगवान के कार्यों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आगे जाकर बताते हैं कि ऐसे कृष्ण के पदकमल में आश्रित जीवों को किसी भी तरह का डर नहीं है, उनको कल्याण प्राप्त हो जाता है। एक असुर था, उसका नाम था माया दानव। वो था असुर, लेकिन जब कांडप्रस्थ जंगल में रहता था, अर्जुन और कृष्ण दोनों एक रथ में सवार होकर गोल गोल घूमकर उस जंगल को आग लगाकर जला रहे थे। उस समय जो भी असुर भागकर बाहर निकला उनको मारा अर्जुन ने, ताकि वो असुर बाहर जाकर बाकी भक्तजनों को तकलीफ ना दे। लेकिन ऐसे भागते समय एक असुर था, नाम था उसका माया दानव। वो भागा नहीं, क्या क्या वो भाग कर आकर अर्जुन का पांव पकड़ा, बोला कि हे राजन मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, मुझे मारो मत। तो अर्जुन ने बोला कि तुम मेरा शरण लिए हो, तुमको कैसे मारूंगा, मार नहीं पाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा तुमको। तो देखिए भगवान कैसे हैं, असुरों को मारते हैं, लेकिन अगर असुर भी शरण में आ जाते हैं तो उनको मारते नहीं है, उनको छोड़ दिया ऐसे। लेकिन असुर ने पूछा अर्जुन को, आपके लिए कुछ तो करना चाहता हूँ मैं, क्या करूँ? भगवान अर्जुन ने बोला, मुझे क्या करना है तुमको, कृष्ण ने मुझे सब सप्लाई कर दिया, मुझे जो भी ज़रूरत है, कृष्ण के लिए कुछ करो, बोला उन्होंने। तो कृष्ण ने बोला उनको, मेरे लिए क्या कुछ नहीं चाहिए, वो तो आत्मा राम है, आप तक काम है। उन्होंने बोला, अर्जुन के लिए तुम कुछ करो। तो इस तरह माया दानव दोनों को दंडवत लगा रहा था, अभी कौन बोलेंगे मुझे क्या करने के लिए। अंत में भगवान ने बोला, ठीक है मैं बोलता हूँ तुमको, मुझे कुछ चाहिए, बोला भगवान ने। क्या चाहिए मुझे? ये पांडवों के लिए इस कांडवप्रस्थ को परिवर्तित करके एक इंद्रप्रस्थ बना दो इसको, ऐसे एक शहर बनाओ, ऐसे सुंदर शहर बनाओ जिसको देख कर सब लोग आकर इधर रहने के लिए इच्छा करेंगे। इधर सड़क इतना सुंदर रहे, मकान इतना सुंदर रहे, बाग बगीचे हो, रंग बिरंगे फूल हो, सुगंधित फूल हो, पेड़ पौधे हो, तालाब हो जिसमें कमल लिली ये सब उगते हैं, और हंस पक्षियाँ ये सब रहते हैं। ऐसे एक सुंदर शहर बनाओ, और शहर के बीच में एक माया सभा करके एक बड़ा महल बना कर दो इन पांडवों को रहने के लिए। भगवान ने ऐसे एक आदेश दिया उसको। देखिए भगवान ने भी खुद के लिए कुछ मांगा नहीं, अपने भक्तों के लिए मांगा उन्होंने। ठीक है वो बना कर दे दिया। वो होने के बाद हस्तिनापुर के सब लोग सोचे कि अरे इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर है, पांडव लोग भी है उधर। तो ब्राह्मण लोग अपने लगेज पैकअप करके इंद्रप्रस्थ की ओर गए, और जो शक्तिशाली क्षत्रिय लोग वो भी उधर जाना चाहा, धनी धनी वैश्य लोग वो भी अपने बिजनेस धंधा पैकअप करके उन्होंने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में जाकर हम खोलेंगे बिजनेस। ये सब पता चला धृतराष्ट्र को, उन्होंने तुरंत उनको अनुमति बंद कर दिया, रद्द कर दिया। उन्होंने किसी प्रजा को अनुमति नहीं हस्तिनापुर छोड़कर जाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन ने बोला कि सब लोग उधर चले जाएंगे तो मैं किसको शासन करूंगा मैं, ऐसे। तो इस तरह से आप देखते हैं भगवान जो है, भगवान के भक्त पांडव जो हैं, अर्जुन, ये सब कृष्ण के मार्गदर्शन में रहे। असुर माया दानव जैसे असुर को भी डर था कि अर्जुन मुझे मारेगा, लेकिन भगवान के शरण लेने के बाद डर चला गया उसका, है ना। इस तरह प्रहलाद महाराज जब अपने माँ के गर्भ में था, तभी देवताओं ने कायादु जो प्रहलाद की माँ को पकड़कर वो लोग देवलोक में लेके जा रहे थे, तो उस समय नारद मुनि आकर बोले, देखो तुम लोग सोच रहे हो कि ये हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी के गर्भ में कौन है, ये बड़ा असुर है। देवताओं ने सोचा कि असुर बाप से भी बड़ा बनकर निकलेगा, बड़ा खतरनाक होगा, असुर का बेटा असुरी होना चाहिए ना, ऐसे उन्होंने सोचा था। नारद मुनि बोला, नहीं ये महान शुद्ध भक्त बनेगा, ये इसका नाम रहेगा प्रहलाद, तो आप लोग छोड़ दो कायद को। तुरंत वो लोगों ने छोड़ दिया। आजकल के जमाने में भी कोई डॉक्टर नहीं जो बोल सकता है कि इस माता का गर्भ में जो बच्चा है वो भक्त बनेगा, इतना तक बोल सकते हैं कि अगर लड़का होगा लड़की होगा, है ना, कोई बोल सकता भक्त बनेगा, लेकिन नारद मुनि बोल दिया। देखिए वो इतने दीर्घदर्शी हैं, देख सकते हैं इसे। और प्रहलाद भी अपने माँ के गर्भ में रहते हुए कथा सुन सुनकर भक्त बन गया, प्रहलाद महाराज भी ऐसे। तो इस तरह वो कायादु डरते थे, लेकिन भगवान के भक्ति में आने के बाद नारद मुनि के मदद के द्वारा वो डर से ऊपर उठ गई। इसलिए बताते हैं, कृष्णा त्रस्यति काल भीम भुजगो, कृष्ण से सर्वम वशेत, सब चीज कृष्ण के वश में है, जो चंद्र है सूर्य है। देखिए एक बार प्रभुपाद जी लंदन में चल रहे थे, अपने हाथ में जो उनके पास एक लाठी रहता था, तो उससे दिखाया उन्होंने, एक घर को दिखाया, देखो उस घर को देखो इस घर को देखो। तो वो घर में भक्तों ने देखा कि वो टेरेस के ऊपर बहुत पत्ता गिरा था। तो अब लंदन में देखेंगे आप, हर घर के बाहर जो घास है एकदम नीटली ट्रिम करके रखते हैं, अच्छा, और वो एंट्री गेट से घर तक पहुंचने के लिए जो रोड है वो एकदम साफ़ सुथरा होता है। उन्होंने देखा, लोगों ने देखी वो साफ़ सुथरा है, ये घास को भी ट्रिम किया है, घर के अंदर कुछ लाइट ऑन है, घर एकदम साफ है, सब देखा भक्तों ने। और प्रभुपाद ने दूसरा घर दिखाया दूसरी दिशा में, उसको देखो, तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद जी उधर पत्ता गिरा है, ऊपर नीचे सब सफाई नहीं हुआ है, घास को ट्रिम नहीं किया है, घर में कुछ लाइट भी नहीं दिख रहा है। तो प्रभुपाद ने पूछा कि दोनों घर में क्या फ़र्क है। भक्त लोगों ने बोला कि इस घर में कोई तो रह रहा है, कोई इंसान अंदर है, इसके अंदर लाइट ऑन है, देख सकते हैं, और ये घर में कोई नहीं है, वो ला करके चले गए लोग कहीं और बाहर, ऐसे बोले। तो प्रभुपाद जी बोले, हाँ अभी हमारी दुनिया को देखो, सुबह उठते समय लाइट लगाया है, क्या है, सूर्य लाइट लगाया है ना, रात को नाइट लाइट है, क्या है, चंद्र है, है ना, और सीजन बदलता है, अलग अलग तरकारी सही टाइम पर आते हैं। मैंने एक लड़के को पूछा, अरे वाटरमेलन क्यों आता है समर सीजन में, वो बोला प्रभु जी समर में बहुत प्यास लगता है ना, इसलिए वाटरमेलन आता है। अरे मूर्ख, वाटरमेलन ठीक है तुमको पीने के लिए अच्छा है, लेकिन किसने भेजा तुमको, कभी कभी लोग पूछते हैं तुम्हारे बाप ने दिया बोलते हैं ना, ये बापा ने बाप ने दिया तुमको, सब बापों के बाप है कि नहीं। जैसे एक बच्चा आता है शाम को अपने घर, घर आते ही देखता है छोटा बच्चा उधर सैंडविच रखा है, टोमेटो केचप रखा है, उसको डालकर कहा था, उसको पूछा अरे इधर सैंडविच कैसे आया, वो बोलेगा स्कूल से आया हूँ, मुझे भूख है इसलिए आ गया सैंडविच, क्या अपने आप आएगा वो, कि माता ने बना कर रखा है ना उसको उधर। इस तरह भगवान ने सब बना कर रखा है हमको, खाने के लिए पीने के लिए सब व्यवस्था करके रखा है। इस तरह प्रभु जी बोला करते थे कि वैज्ञानिक लोग नट एंड बोल्ट तैयार करते हैं, कोई खा नहीं पाएगा उसको नट एंड बोल्ट, लेकिन भगवान इस तरह बना कर देते हैं इस तरह। तो इस तरह इस दुनिया में चंद्र सूर्य नक्षत्र समुद्र हवा भूमि और इस तरह गंधर्व यक्ष चारण विद्याधर किन्नर राक्षस यक्ष ये सब लोग और मनुष्य और जलचर और आसमान में उड़ने वाले और आसमान सब कृष्ण के वश में है, ऐसे एक श्लोक है। द्यौशतन्द्रक नक्षत्र कम दिशो भूर्महो दधि वासुदेवस्य वीर्येण विदृदानि महात्मनः ससुरासुर गंधर्व सयक्षोरग राक्षसम जगद वशे वर्तते दम कृष्णस्य सचराचरम, सब कुछ कृष्ण के वश में है। ऐसे बताते हैं, ऐसे विष्णु पिता बता रहे हैं विष्णु सहस्र नाम में। और आगे बताते हैं, हे कृष्ण मेरे जीवन में आपके लिए अखंडित भक्ति हो। कभी कभी भक्ति लोग चालू कर देते हैं वो बहुत आसान है, कभी कभी लोग भक्ति को छोड़ भी देते हैं वो भी बहुत आसान है। क्या कठिन है? हाँ, उसका मेंटेन करना, बचा कर रखना, हर दिन सोलह माला करना, माला को कम नहीं करना, और मंदिर में आते रखना, भक्तों के संग में जुड़े रखना। तो मैं महावीर प्रभु को बोल रहा था कि तो आप लोगों का ये कार्यक्रम शिवाजी मंदिर में शुरू हुई थी, बहुत सालों के पहले इन्होंने शुरू की थी। उस समय 10-20 ऐसे लोग आते थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ गया। हाँ, तो उसके बाद उपेंद्र हरि के प्रभु के घर में होता था, उसके बाद टेरेस में चला गया था वो कार्यक्रम, है ना, ऊपर टेरेस में नीचे ही होता था वो। अच्छा, नीचे करते थे ऐसे। अभी उपेंद्र हरि प्रभु एक पाँव पुणे में है, एक पाँव मायापुर में है उनका। हाँ, शिफ्ट हो गया अभी। हाँ प्रभु जी, तो उसके बाद आप लोग इधर रुक्मिणीनाथ प्रभु के घर में आप लोग आ रहे हैं इधर, बहुत अच्छी बात है कि सहस्र तीर्थ प्रभु और बाकी अनेक अच्छे भक्त हैं इधर, और महावीर प्रभु आप लोग इस कार्यक्रम को जारी रखे हैं और चला इतने सालों साल चला कर आए हैं। और इन भक्तों के ग्रुप से अनेक भक्त सोलहमाला तक आकर परम पूज्य गोपाल शर्मा से दीक्षा लेकर भक्ति में एकदम स्थिर होकर भक्ति करते आए हैं। ये बहुत भगवान का बेंट है आप लोगों के ऊपर, इतना अच्छी तरह ही एक सुंदर कांग्रीगेशन है इधर धनकावड़ी में। तो इस तरह ये संभालने का काम, मेंटेन करने का काम सिर्फ विष्णु कर सकते हैं। शुरू करना ब्रह्मा का काम है और नष्ट कर देना शिव जी का काम है, वो सब हो सकता है आसानी से। हैं, उसको मेंटेन करना विष्णु का काम है। तो इसलिए बताते हैं कि अखंडिता भक्तिर, मेरे जीवन में अखंडित भक्ति मुझे हो, किसी भी कारणवश हम भक्ति हमारा छूट न जाए। इस तरह तो भो कृष्ण तुम्हें वाश्रय, हे कृष्ण मैं आपका शरण लेता हूँ, इस तरह इस प्रार्थना में भक्त बताते हैं। देखिए, एक घर में एक पुरुष है, अगर वो पुरुष देखता है कि उसके भी उसके पत्नी की साड़ी है, आभूषण है घर में, सब कुछ रखा है, टेबल में रखा है, चेयर में रखा है, उसको देखकर वो संतुष्ट नहीं होगा वो। जब उसकी स्त्री है, धर्मपत्नी है, वो चलती है, फिरती है, कुछ नाश्ता बनाती है, हंसती है, डांटती है, कुछ खाने के लिए देती है, तभी उसको सुखी रहता है, है ना, ऐसे पुरुष। इसी तरह एक एक घर में अगर कोई व्यक्ति का, कोई पुरुष का एक कोट हो, सूट हो, टाई हो, उसके ऑफिस जाने वाले सूटकेस हो, उसको देखकर लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा कपड़ों से। लेकिन जब व्यक्ति रहेगा घर में तभी उनका संतुष्टि होता है उस व्यक्ति से, करेक्ट है ना? क्योंकि इस दुनिया में हम देखते हैं हमारे आकर्षण जड़ पदार्थ के ऊपर नहीं है, हमारा आकर्षण किसके ऊपर है? आकर्षण जड़ पदार्थ के ऊपर है नहीं, आकर्षण जो जिंदा है लोग उनके ऊपर हमारा आकर्षण है। जब वो जिंदा लोग इस तरह के जड़ पदार्थों को पहनते हैं, वो सब पहनते हैं, हम उनसे आकर्षित होते हैं लेकिन जड़ पदार्थों से नहीं। और जड़ पदार्थ के साथ के ऊपर अगर आपको आकर्षण भी होगा, उतना समय नहीं टिकेगा वो, जितना आपको लोगों के ऊपर आपको आकर्षण होता है। एक बड़े सिनेमा एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जब वो जिंदा हैं, हजारों लाखों लोग सिनेमा जाते हैं उनके सिनेमा देखने के लिए, है ना, लेकिन अगर वो मर गए तो मृत शरीर को कौन देखने के लिए आएगा उसको, है? गया वो भी, उससे कुछ आकर्षण नहीं है इस दुनिया में। ये बात मैं क्यों बोला, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम सब लोग संबंध के लिए तड़प रहे हैं, हमें ऐसे संबंध हम चाहते हैं अपने जीवन में जिस संबंध से हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। इंसान क्यों शादी करता है? सोचता है कि अरे मेरा हृदय पत्थर जैसा है, एक शादी करूंगा तो पत्नी आने के बाद और आनंद मिलेगा हमको। तो देखते हैं कि अभी शादी हो गया, 5 साल हो गया, अभी तक पूरा आनंद नहीं मिला है, लेकिन बच्चा आ जाता है, सोचते हैं ठीक है बच्चा आएगा तभी आनंद आ जाएगा। तो बच्चे के ऊपर दोनों का ध्यान चला जाता है उसके बाद, है ना, आप देख सकते हैं इस तरह। तो इस दुनिया में सब लोग सुखी बनना चाहते हैं, और सुखी बनने के लिए हम जो लोग जिंदा हैं उनके साथ हम जुड़ते हैं इस दुनिया में। प्रभुपाद जी ने एक बार बोला, एक्वेरियम आपको मालूम है, एक्वेरियम में मछली रहता है, रंग बिरंगे मछली, सोने का रंग का, हरा रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का, ऐसे अलग अलग कलर का होता है, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है वो। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर तुम ऐसे मछली जिधर उधर उधर फिरने वाली मछली को देखो, तुम एक घंटा भी देख सकते हो, लेकिन अगर वो मछली मर गया, सब मछली मरकर नीचे गिर पड़े हैं, नीचे गिरे हैं वो एक्वेरियम में, अभी कुछ फिर नहीं रहे हैं, सब मर गए हैं, उसको कोई देख पाएगा? उसको आप में से कोई है जो एक घंटा देखेगा उसको मरा हुआ मछली को ऐसे देखते रहेंगे आप? तो अभी आप बोलिए, मरे हुए मछली को मरे हुए मछली को हम देखने में कुछ मजा नहीं है, है ना, लेकिन जिंदा मछली को देखने में मजा आता है। कारण क्या है बोलिए कोई? अगर जिंदा है तो हम लोग देख सकते हैं ना बहुत समय के लिए, क्या कारण क्या है? हाँ चेतना, एक हरिबोल बोल दीजिए उनको, हरिबोल। नाम क्या है उनका? हाँ विनायक। प्रभु ने सही जवाब दिया, क्यों वो मछली जब जिंदा है उसके ऊपर हमें आकर्षण है, क्योंकि उसके अंदर चेतना है। ठीक है, अगर चेतना है, अभी टेबल में चेतना नहीं है, अभी हम टेबल देखना नहीं चाहते हैं, अभी कोई भक्त के अंदर चेतना है, हम उसको देखना चाहते हैं। तो चेतना होने से क्या हुआ, हम क्यों देखना चाहते हैं चेतना होने से? ठीक है, चेतन वस्तु है, फिर क्या, क्यों आकर्षण उसमें है, आकर्षण का कारण क्या है, क्यों सुंदरता रहती है? ठीक है, चेतना है, लेकिन चेतना रहते समय सुंदरता क्यों रहता है वो पूछ रहा हूं मैं, क्यों सुंदरता रहता है वही प्रश्न है। बोलिए,
आदान प्रदान होते रहता है।
अच्छा, आदान प्रदान होता है इसलिए, अच्छा अच्छा, लेकिन मछली को मालूम नहीं कि आप खड़े हैं उसे देख रहे हैं, आपके साथ क्या आदान प्रदान करता है, वो अपने आप घूम रहा है, वो अपने ही दुनिया में, वो अपने मजे में, वो लेकिन आप उनको उसको देखकर आपको ये होता है, आकर्षण होता है। और पीछे हाँ, उसमें भगवान वास करते हैं क्या उसमें? ठीक है, और एक जवाब की हम ढूंढ रहे हैं, कोई माता है कोई बोलेंगे, कोई प्रभु जी है, ठीक है, क्या करते हैं वो? अच्छा हा? कोई ऐसे फिर रहे हैं इधर उधर, उसमें क्या आनंद है हमें, उसमें आकर्षण क्या है? देखिए अभी तक कितने जवाब नहीं, कोई देना चाहते हैं? कोई आत्मा है, ठीक है ठीक है, अभी चेतन बोला उन्होंने, वही चीज है आत्मा है। आत्मा होने से क्या हुआ, क्यों आकर्षण क्यों है, कारण क्या है? हाँ हाँ बोलिए, क्यों क्यों कारण क्या है? कारण क्या मालूम है? आत्मा आकर्षक है, वो ही पॉइंट है, आत्मा आकर्षक। इसलिए आत्मा आकर्षक होने के कारण जब एक शरीर में आत्मा होता है वो शरीर आकर्षक होता है, जब आत्मा निकल जाता है शरीर में कुछ आकर्षण नहीं है। तो आप लोग देखेंगे इस दुनिया में भी हम लोग आकर्षित होते हैं जिंदा लोगों से, क्योंकि उनके शरीर में क्या है, आत्मा। जब तक आत्मा है तब तक आकर्षण है। देखिए बंगलोर में एक आईटी कंपनी है, बंगलोर में उसमें एक व्यक्ति काम करता था, उसका जब 35 हो गया, 35-40 हो गया उम्र, कुछ तो हार्ट अटैक हुआ उसका, तो बेचारा मर गया। तो वो बीबी और वो पति पत्नी दोनों अलग रहते थे, दोनों एक ही घर में रहते थे ऐसे। तो रात को देखा वो 9 बजे मर गया वो, तो बीबी डर गई, उन्होंने फ़ोन किया मुंबई, अपने माँ बाप को बोला कि मर गया क्या किया जाए। वो लोग बोले चिंता मत करो, हम कल सुबह का फ्लाइट लेकर आ जाएंगे हम। तो वो बोली रात को मैं किधर रहूँगी? वो लोग बोले नहीं उधर ही रहो, घर में रहो, हम सुबह आ जाएंगे। नहीं नहीं मुझे डर होता है, और भूत है प्रेत है ऐसे। इसलिए शंकराचार्य वो क्या बोलते हैं, वयसी ये बोलते हैं, यावत पवनो निवसति गेहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतवति वायु देहापाये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. బతాతే హై జబ్ తక్ శరీర మే ఆత్మా హై హమ్ ఉస్ శరీర కో ఆలింగన్ దేతే హై చుంబన్ దేతే హై ప్రేమ కర్తే హై కుశల్ పూచ్తే హై సబ్ కర్తే హై లేకిన్ జబ్ ఆత్మా నికల్ గయా వో శరీర మే వో వాస్ ఆ జాతా హై కూన్ బహనా స్టాప్ హో జాతా హై ఔర్ హమ్ ఉసే డర్తే భీ హై వో భూత్ హై ప్రేత కర్కే డర్తే హై హమ్ ఉస్కో ఆగ్ కే అందర్ దే దేతే హై ఉస్ శరీర కో హై కి నహీ క్యోంకి సుందరతా ఉస్ శరీర మే క్యా థా ఆత్మా హై నహీ తో ఈ శరీర క్యా హై ఆప్ సబ్కో మాలూమ్ హై శరీర కే అందర్ క్యా హై క్యా నికల్ రహా హై బాహర్ హర్ నవ ద్వారో సే క్యా క్యా నికల్ రహా హై క్యా సుందరతా క్యా హై శరీర మే ఆత్మా జబ్ రహతా తభీ సుందర హై ఇస్లియే ఆకర్ష ఆకర్షణ దేనే వాలా కౌన్ హై ఆత్మా అభీ ఏక్ ప్రశ్న ఉఠ సక్తా హై ఆప్కో ఆప్కు పూచ్ సక్తే హై కి ఆత్మా క్యో ఆకర్షక్ హై కోయి బతా సక్తే హై అభీ ప్రభు జీ లోగ్ చార్ పాంచ్ లోగో నే జవాబ్ దే దియా అభీ మాతాఓ కో పూచేంగే మాతా బోలియే हाँ माता ने सही जवाब दिया परमात्मा का अंश है इसलिए आत्मा भी आकर्षक है ये घरी बोल बोलिए अरे पकड़ा सही आंसर उन्होंने हाँ क्योंकि कृष्ण आकर्षक है इसलिए आत्मा भी आकर्षक उनका अंश है जैसे इतना बड़ा कड़ी साकर आपको मिल गया मार्केट से उधर से थोड़ा थोड़ो कड़ी साकर उसको कहा कैसे लगेगा आपको उतना ही मिठास है जितना बड़े कड़ी साकर में मिठास है लेकिन इसमें इसमें क्या फर्क है ये गुणात्मक रूप से थोड़ा ये मात्रा के रूप में देखा जाए तो ये साइज थोड़ा छोटा है वो बड़ा है ना लेकिन टेस्ट एक समान है ना जिस तरह कृष्ण आकर्षक है इस तरह आत्मा भी आकर्षक है लेकिन कृष्ण सर्व आकर्षक है लेकिन आत्मा अंश होने के कारण ये सबको आकर्षित नहीं कर पाता है आप देखेंगे सिनेमा एक्ट्रेस एक्टर एक्टर एक्ट्रेस में भी कुछ एक्टर कुछ लोगों को आकर्षित करता है और बाकी लोग उससे आकर्षक नहीं है वो लोग दूसरे एक्टर से आकर्षित हो जाते हैं एक्टर से करेक्ट है ना लेकिन कृष्ण कृष्ण की ओर सब जीव आकर्षित होते हैं कि वो सर्व आकर्षक है वो समझे ना आपने क्योंकि वो सर्व आकर्षक है इसलिए हम लोगों के अंदर भी आत्मा के अंदर भी एक तरह का आकर्षण है लेकिन जब आत्मा निकल जाता है शरीर में कुछ शरीर का मतलब नहीं है इसलिए कुंती महारानी बोलती है कृष्ण को हे कृष्ण आप हस्तिनापुर में इतने समय हमारे साथ रहे लेकिन अभी हस्तिनापुर छोड़कर आप द्वारका जाने के लिए तैयारी चल रहा है आपकी लेकिन आप द्वारका चले जाओगे तो हमारा हाल क्या होगा हमारे अनेक लोग दुश्मन भी है युद्ध के बाद साथ साथ आपके बिना हमारे जीवन कुछ रस ही नहीं रहेगा हमारे जीवन में क्योंकि आपके पदकमलों की छिन्ह भूमि में जब पड़ता था हस्तिनापुर में इतना समृद्धि फैल गया था आपके अमृत भरी आंखों से अपने प्रकृति की ओर दृष्टिपात की इसलिए प्रकृति में हरियाली छा गई लेकिन अभी आप निकल कर चले जाओगे द्वारका तो हमारा हाल क्या होगा ऐसे उन्होंने बोला तभी कृष्ण ने बोला देखो तुम्हारे पांडव लड़के जो हैं साधारण नहीं है सब शक्तिशाली हैं पराक्रमशाली हैं युधिष्ठिर हो अर्जुन हो भीम हो देखिए भीम के अंदर क्या था शक्ति था वो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ कर मार सकता था दुश्मनों को ऐसे और युधिष्ठिर महाराज भी भाला को फेंक कर युद्ध भूमि में वो करने में बड़े निपुण थे अर्जुन भी किस में निपुण था अर्जुन हाँ धनुष में निपुण था नकुल सहदेव किस में निपुण थे तलवार तलवार चलाने में बड़े निपुण थे ये सब लोग ओलंपिक चैंपियन थे ये सब लोग उनके जमाने में कोई उनको हरा नहीं सकता था ऐसे तो भगवान ने बोला देखो तुम्हारे पांडव लड़के जो हैं कितने बुद्धिमान हैं कितने शक्तिशाली हैं तुमको क्या डर अगर तुमको ज़रूरत भी पड़े हमारे यादवों में मैं इनको भेज सकता हूँ जैसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनको भेज सकता हूँ कुंती ने एक श्लोक बोला सब लोग दोहराइए के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडव भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितु ये बोलती है कुंती हे भगवान ये बता रही है कि के वयम नाम रूपाभ्याम हम लोगों का क्या मतलब रहेगा जीवन, क्योंकि हम लोग आपके बिना एक मृत शरीर के बराबर हो जाएंगे। जिस शरीर में सांस नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसे हम हो जाएंगे आपके बिना। क्योंकि पांडव और यदुओं के अंदर जो भी क्षमता है, शक्ति है, उसका मूल कारण कौन है? आप ही हो, ऐसे बताती है कुंती। देखिए कुंती कितना बुद्धिमान है, क्योंकि पांडवों के अंदर क्षमता था, लेकिन उन्होंने फिर भी माना नहीं कि उनके अंदर क्षमता। जैसे ये ट्यूबलाइट है, स्विच ऑन करो ऑन हो जाता है ना, स्विच ऑफ करो ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि मैं ट्यूबलाइट का नियंत्रण करता मैं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर MSC भी कट कर देगा पावर, इधर हमारे ऑन ऑफ करने से कुछ मतलब है क्या? कुछ नहीं है। इस तरह से मैं अभी हाथ ऊपर कर रहा हूँ, हाथ नीचे कर रहा हूँ, बोले कि मेरा हाथ है, लेकिन कुछ लोगों का पैरालिसिस हो जाता है, देखा आपने, तो ऐसे 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 हो जाता है। उनको बोला हाथ उठाओ, नहीं उठ नहीं रहा प्रभु जी, हाथ सुन रही ना उनको। इसलिए हम समझते हैं कि जब भगवान परमिशन देते हैं तभी हम हाथ उठा पाएंगे। अगर भगवान परमिशन नहीं देते तो उठा नहीं पाएंगे हम लोग। कभी कभी कुछ लोगों का आधा शरीर एक हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पैरालिसिस अटैक होता है ना, हाँ, तो इसके कारण वो लोग हिला नहीं पाते ऐसे। इसलिए हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, हमारा हाथ आंख कान पैर इत्यादि भगवान का बेंट है जो भगवान ने हमको दिया है। अगर भगवान ने कुछ बेंट दिया है हमको, इसको हम गिफ्ट के रूप में स्वीकारना चाहिए, लेकिन इसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे, ये इसका दुष्प्रयोग करेंगे तो दंड मिलता है। एक स्त्री थी, एक बार उसके पति ने कहीं से तो बहुत बड़ा एक ये लेके आया था, नथनी बोलते हैं ना उसको, जो नाक में पहनते हैं ना, नथनी, बड़ा नथनी पहना था उन्होंने, और उसमें डायमंड से स्टड भी किया था ऐसे, हैं बहुत सुंदर। तो अपने सब मित्रों के सहेलियों के सामने आ गई, सबके सामने ऐसे आकर खड़े ऐसे नाक दिखाया उनका, और सब लोगों ने देख लिया, ऐसे दिखाए बिना भी देख ही लेते थे वो जरूर, फिर भी उन्होंने ऐसे दिखाया। सब लोगों ने पूछा है किधर से तुमको मिला इतना सुंदर नथनी, कौन कौन लेके आया? वो बोला कि मेरे पति ने लेके आया है, वो गया फॉरेन, गया फॉरेन से लेके लंदन से लेके आया मेरे लिए। तो सब लोगों ने बोला वाह वाह बहुत सुंदर है। तो एक कवि पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पति ने तुमको नथनी लेके आया, लेकिन नाक किसने दिया तुमको, है ना, ऐसे पूछ रहे हैं, उनको तुमने भूल गया, ऐसे बोला उन्होंने। इस तरह कुंती को देखे वो याद रखती है अपने मन में, मेरे बच्चों के अंदर क्षमता है, फिर भी कृष्ण के कृपा के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब कृष्ण का कृपा रहेगा तभी उनके अंदर क्षमता रहेगा, नहीं तो सब शक्ति क्षीण हो जाएगा कृष्ण के बिना। तो इसलिए हम पढ़ते हैं भागवत में, महान भक्तों का ये चेतना होता है कि कृष्ण के आशीर्वाद से हम सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। कृष्ण के आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन में कुछ भी रस नहीं रहेगा। ये कुंती महाराज ने कहीं बोलना नहीं है, लेकिन सब भक्त जैसे भीष्म पितामह हो, पांडव हो, कुंती हो, उनका चेतना ऐसे था। तो ये भागवत के दशम स्कंद में हम पढ़ते हैं, जब देवकी की शादी हुई थी उस समय वसुदेव और देवकी दोनों को एक रथ के ऊपर बिठाकर कंस ये घोड़े को चला रहा था खुद। ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि मेरे बहन को मैं कितना प्रेम करता हूँ, आप लोग देख लो, ऐसे अपने प्रेम का प्रकटीकरण कर रहा था कंस ऐसे। लेकिन आसमान में देवता लोगों ने देखा कि क्या चल रहा है, कंस इतना प्रेम बरस रहा अपने बहन के ऊपर, अगर ये इतना अच्छा सद्गुण वाला हो जाएगा तो कृष्ण कब आएंगे और कब उसको वध करेंगे कंस को, हैं। तो उधर से एक आकाशवाणी सुनाई दिया, अरे मूर्ख, तुम्हारे बहन के आठवां बच्चा जो होगा तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जब आकाशवाणी को सुना इतना डर गया, आपको मालूम है क्या किया उसने, अपने बहन का बाल पकड़कर उसको मारने के लिए तैयार हो गया, तलवार अपने हाथ के ऊपर उठाकर। इससे एक बात पता चलता है, इस दुनिया में लोग आपके निकट मित्र होते हैं, लेकिन उनके इंद्रिय तृप्ति में किसी ने मिट्टी डाला तो आपके दुश्मन बन जाएंगे वो तुरंत, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ कंस का। तो अपने बहन को बड़ा मानता था पहले, प्रेम से लेके जा रहा था रथ में, अभी उसको ही मानने के लिए तैयार हो गया। तभी वसुदेव जो पति थे उनको क्या करना चाहिए था, मैंने एक लड़के को पूछा, स्टूडेंट को, अगर तुम वसुदेव के स्थान में होते तुम क्या करते थे? वो लड़का बोला, अरे वो तलवार दिखा रहा है, पहले बीबी को मारेगा बाद में मुझे भी मार देगा वो, इसलिए मैं उधर से भाग जाऊंगा बोला। मैंने उसको पूछा, अरे मूर्ख तुमने शादी किया है, बीबी को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है ना, भाग जाओगे तुम? ऐसे मैंने पूछा। फिर क्या मैं बोलूंगा कि आप लोगों के परिवार ठीक परिवार नहीं है, इस तरह के परिवार आप लोग तलवार उठाते हो, हमको जमेगा नहीं आपके साथ करके, मैं भाग जाऊंगा बोल रहा है। तो वसुदेव उधर से भाग गए, क्या भाग गए? वो भाग गए नहीं। तो दूसरे लड़के को पूछा, तुम क्या करोगे? वो बोल रहा है, मैं मेरा तलवार उठाऊंगा। कंस कहता, ठिशुम ठिशुम ठिशुम, झगड़ा करूंगा, ऐसा झगड़ा करूंगा, हम कंस को हरा दूंगा। मैंने बोला, देखो सब कंस के आदमी हैं इधर इर्द गिर्द सब लोग हैं, तुम तलवार उठाओगे तो क्या करेंगे? वो तुरंत गिरफ्तार करेंगे तुमको। तो कंस क्या करेगा, बहन का सर भी काट देगा और तुमको गिरफ्तार करके तुमको या तो जेल में डालेगा, नहीं तो तुम्हारा भी गर्दन काट देगा वो, क्योंकि आदमी सब उसके आदमी हैं, तो तुम्हारे तलवार उठाने से क्या फायदा है? तो ऐसे मैंने पूछा, सब विद्यार्थी बोले कि प्रभु जी हमको मालूम नहीं क्या करने का ये अवस्था में। तो एक बोला कि मैं कंस के हृदय में अनुकंपा पैदा करूंगा। कैसे? बोला, करके रोऊंगा उधर, मैं रात में बैठ जाऊंगा और क्या करूंगा, जोर से रोऊंगा। अरे तुम रोने से क्या होगा? तो ये विद्यार्थियों को ये प्रश्न पूछने के बाद कोई जवाब नहीं दे पाया वो, समझना आपने। देखिए शास्त्र भागवत में इतने अलग अलग परिस्थितियों के बारे में चर्चा है, हम जैसे लोगों को भी कठिन परिस्थितियों में उसको कैसे सामना करना चाहिए वो भागवत में सिखाया गया है। वसुदेव ने क्या किया मालूम है आपको? वसुदेव ने जब देखा परिस्थिति, समझ गया तुरंत, ठीक है कंस को अपने जान से डर है, हमारा जान ले लेगा करके डर है, तो इसको थोड़ा आत्मा और शरीर के बीच में फर्क समझा दो। इस तरह बोलकर वसुदेव ने उनको बोला कि पहले उन्होंने बोला, हे कंस एक बात समझो, तुम अगर देवकी का आठवां बच्चा तुमको मारने वाला है तो क्या हुआ? हर एक इंसान को इस दुनिया में शरीर को छोड़ना ही पड़ता है, अगर 50 में नहीं मरा तुम तो 80 में मरोगे, हर एक व्यक्ति को मरना ही पड़ता है इस दुनिया में। ये शरीर अगर तुमसे छूट गया तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको अगले जन्म में और एक शरीर मिल जाएगा ना आपको, एक गाड़ी गया दूसरा गाड़ी आ गया है, इस तरह है। तुम एक शरीर को बचा कर रखने के लिए तुम अपने बहन को मारोगे क्या? एक स्त्री को कभी मारना नहीं चाहिए, शास्त्र के अनुसार दंड दिया जाता है पुरुषों को, स्त्रियों को नहीं दिया जाता है ऐसे, इस तरह है। उसका गर्दन काटना महापाप है, ये बहुत बड़ा पाप लग जाएगा तुम्हारे अकाउंट में। इतना ही नहीं, इसका अभी भी शादी हुआ है, शादी हुए स्त्री को मारना और भी महापाप है, तो स्त्री को मारना नहीं चाहिए, बहन को मारना और भी पाप है, शादी हुई स्त्री को मारना और भी पाप है। पुत्र को उपमा बोला कि ये पुत्रिका के बराबर है तुम्हारे, तुम्हारी पुत्री के बराबर, और तुम्हारी बहन है ये तुम्हारे करुणा पात्र, करुणा प्राप्त करने के लिए लायक है। ऐसे बहुत प्रेम से समझाया। वो बोला, नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं इसका बेटा मारेगा मुझे, वो मारने के पहले इसको ही मार दूंगा, ऐसे बोल रहा था वो, कम से मूर्ख था वो, समझ नहीं पा रहा था। वसुदेव ने सोचा क्या किया जाए, वसुदेव ने और भी समझाया उसको उदाहरणों से। उन्होंने बोला, देखो एक पत्ते में जब एक कीड़ा चलता है वो पत्ते को छोड़ने के पहले क्या करता है, ऐसे बाहर आकर दूसरे पत्ते की को पकड़ता है, पकड़ने के बाद पहले पत्ते को छोड़ देता हो। जैसे हम लोग चलते हैं तो एक पांव आगे सामने रखकर पीछे के पांव को हम ऊपर उठाते हैं, है ना। ये दो उदाहरण दिया उन्होंने। उदाहरण देकर उन्होंने बोला कि देखो इस तरह आत्मा को तुम अगर शरीर को छोड़ना पड़ेगा ना तुमको, लेकिन तुम दूसरे शरीर को पकड़ लोगे तो उस समय इसको छोड़ते हो, लेकिन ये सब फिलॉसफी उसके सर के अंदर घुसा नहीं उस समय। तो कम से समझ गए कि ये समझने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला, वसुदेव ने, देखो समाज में तुम्हारा प्रेस्टीज का क्या होगा, लोग बोलेंगे कि अपने बहन को मार दिया, एक स्त्री को मार दिया शादी के टाइम, तुम्हारा बदनाम हो जाएगा समाज में, तुम्हारा नाम बचा कर रखने के लिए तुम क्या करो, इसको मारो मत, छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, वन आवर इज ओवर, मुझे मालूम है, इनको बोल कर रखा हूँ मैं, एक घंटे होगा तो एक चिट दे देना मुझे, इसलिए तो उन्होंने वो भी बोला, वो प्रेस्टीज भी बोला, ठीक है जो भी लोग सोचे मेरे बारे में मुझे नो प्रॉब्लम। कभी कभी कुछ लोग अपने नाम बोलते हैं, मेरा नाम रावण है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग नाम भी रखते हैं ऐसे, कुछ कुछ लोग हैं। तो ये बोला कि मुझे डर नहीं, लोग मेरे बारे में जो सोचना सोचने दे, लेकिन मेरा जान बच जाएगा ना, ऐसे बोला। तब वसुदेव ने क्या बोला, कम्स में हर एक बच्चे को मैं दे दूंगा तुमको, आठवां बच्चे को भी दे दूंगा तुमको। जब ये बात सुना कम्स, छोड़ दिया उसको। तो वसुदेव ने क्या सोचा अपने मन में, ठीक है आठ बच्चे होने तक ये जिंदा रहेगा मरेगा किसको पता, भगवान को पता, हो भी सकता मर जाएगा, हो सकता है, और ये तो असुर है, हो सकता है कोई और ही मार देंगे इसको, वो भी हो सकता है। और उन्होंने सोचा कि कम से कम मैं अभी देवकी का जान बचा दूं, अभी बाद में हम सोचेंगे क्या होगा, ऐसे उन्होंने सोचा। और साथ साथ वसुदेव ने ये भी सोचा कि भगवान ने वचन दिया है कि वो खुद हमारे बेटे बनकर आएंगे, तो आठवां बच्चे बनकर, तो जो भी तकलीफ हमको झेलना पड़े अपने जीवन में, हम भगवान की राह देकर हम सब तरह के तकलीफों को हम झेलते जाएंगे। देखिए ये भक्त का लक्षण है, हमारे भक्ति में भी जब हम भक्ति करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए विविध ड्यूटीज रहते हैं घर में, जैसे माताएं हैं उनको कुकिंग करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, पुरुषों को ऑफिस धंधा काम धंधा करना पड़ता है, लेकिन ये सब के साथ साथ भक्ति को भी चलाना होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको कभी कभी कठिन चलता है स्केड्यूल, सब चीज़ करने में चक्कर आ जाता है हमको, फिर भी भक्त को सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति में करने के लिए सब तरह के तकलीफों को मैं झेल लूँगा मैं। इतना तक कि कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, विपद संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्णा, मैं इच्छा करती हूँ कि मेरे जीवन में तकलीफ के बाद तकलीफ आते रहे, ऐसे बोला उन्होंने। आप में से कोई है जो मंदिर में जाकर भगवान बोलेंगे तकलीफ भेजते रहो भगवान, कोई बोलेंगे? कोई हम क्या बोलते हैं भगवान को, हे भगवान सब तकलीफों को निकाल दो, दूर कर दो, ताकि हम शांति से जी सकते हैं। लेकिन वो क्यों तकलीफ मांग रही है, वो बोल रही है अभी तक तकलीफ था और आप भी साथ में थे, अभी तकलीफ सब खत्म हो गया, मेरा बेटा राजा बन गया, अभी अभी आप लोग टाटा बोलकर आप द्वारका जा रहे हैं, अगर आप द्वारका चले जाएंगे तो हम लोग आपके बिना रहना पड़ेगा हमको, इसलिए अच्छा है कि आप तकलीफ दो, जब तकलीफ को सुलझ जाने के लिए आप हमारे साथ रहो, इस तरह वो बोलती है। तो मैंने मेरे विद्यार्थियों को पूछा एक बार प्रश्न, आपको क्या चाहिए, तकलीफ और कृष्णा चाहिए, और नो तकलीफ नो कृष्णा ये चाहिए, ऐसे बोला। आप चुनिए आप लोग, कितने लोगों को कृष्णा और तकलीफ साथ में चाहिए, ठीक है बहुत लाभ ऊपर, अच्छा बड़े करेजस लोग हैं, अच्छा कितने लोगों को तकलीफ भी नहीं चाहिए कृष्णा भी नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो मैंने जब पूछा, एक लड़का बोल रहा है मुझे नो तकलीफ और कृष्णा चाहिए, कृष्णा भी चाहिए और तकलीफ भी नहीं चाहिए उसको। लेकिन भगवान कभी कभी अपने भक्तों को बोलते हैं कि देखो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन तकलीफ जब आता है तो मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारा सारथी बनकर आ जाऊंगा, है कि नहीं, ये भगवान का वचन है। ऐसे तो एक लड़का था, छोटा लड़का, आपका उम्र कितना है, आपका 12, उससे भी छोटा था कोई एक लड़का, कोई 7 उम्र का था कोई, ऐसे एक लड़के उसके, लेकिन वो अनाथ था वो लड़का। और जब वो लड़का एक दिन क्रिकेट खेल रहा था, उसको चोट पहुंच गई इधर घुटनी में, तो करक बॉल जो गिरा उसके इसमें आ करके चिल्लाया, तुरंत उसको उठाकर मित्रों ने अस्पताल में लेके गया, खून भरा था। तो उस अस्पताल में एक नर्स थी माताजी, उसके घाव को ठीक किया उन्होंने, बैंडेज मलम पट्टी वगैरह लगाया। तो वो जो थी वो नर्स, बहुत प्रेम से बात किया ये बच्चे से, तो बच्चे को तुरंत उसके माँ का याद आ गया, क्योंकि वो जब दो तीन साल का था तभी उन्होंने देखा था माता को, उसके बाद नहीं देखा था उन्होंने। अभी तुरंत तो माँ का याद आया उसको, ठीक है। उसके बाद होने के बाद अस्पताल से उसको डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया। चार पाँच महीने के बाद वो खेल रहा था ऐसे ही। अपने मित्रों को बोला कि आज भी दूसरे घुटने में अगर कुछ घाव लग जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बोला उसने। तो मित्रों ने पूछा क्यों, अरे मूर्ख तुम क्यों घाव चाहते हो, आप में से किसी को मालूम है वो क्यों घाव चाहता था, किसी को मालूम है, किसका मालूम है, पीछे पीछे बोलिए, हाँ क्या है, क्या हाँ क्या चाहिए, माँ का प्रेम किसने दिया, हाँ नर्स ने दिया, करेक्ट। उसको माँ का प्यार चाहिए था, इसलिए उसको मालूम था कि अगर गांव हो जाएगा तो मुझे अस्पताल में लेके जाएंगे और वही नर्स ये करेगी बैंडेज वगैरह पहना है तो मुझे माँ का प्यार मिलेगा, इसलिए वो जाने के लिए तैयार था, समझा ना आपने। तो इस उदाहरण में हमने क्या समझा, अगर मुझे प्यार मिलेगा तो मैं दुख सहन करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह कुंती ने बोला कि हे कृष्ण हमारे साथ दुख भी रहे हमें चिंता नहीं, क्योंकि जब आप रहते हो हम दुखों को हम भूल जाते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। यही बात प्रहलाद और ध्रुव महाराज ने बोला है, त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, हे भगवान आपकी कथा श्रवण में हम हमारा चित्त मग्न हो जाता है, हम हमारे सब दुखों को भूल ही जाते हैं, ऐसे बोलते हैं प्रहलाद भी है। तो इस तरह ये वसुदेव ने भी सात छह बच्चों को एक के बाद एक जाकर दिया कंसे के पास, कंसे ने मारा, सहन कर लिया उन्होंने। लेकिन जब सातवां बच्चा बलराम थे, उसके बाद आठवां जब कृष्ण अवतरित हुए तो कृष्ण को देखकर वसुदेव देवकी ने दंडवत प्रणाम की और वो दोनों ने डर प्रकट किया अपने हृदय से, बोला कि हे भगवान सात छह बच्चों को मारा इसने तो आपको भी मारने के लिए आएगा, तुरंत आपको कहीं ना कहीं तो आपको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, आपको आप इधर नहीं रहना चाहिए, बड़ा खतरनाक है इधर। तो भगवान को कौन मार सकता है, कोई मार नहीं सकता है, फिर भी प्रेम के वश में आकर उन्होंने ऐसे सोचा। तो भगवान ने बोला ठीक है वसुदेव मेरा आदेश है आपको, आप मुझे लेके जाओ गोकुल में और मुझे जाकर यशोदानंद बाबा के घर में छोड़ दो, महल में छोड़ दो मुझे ऐसे। तो भगवान ने जब आदेश दिया, वसुदेव ने देखा कि उनका हाथ में जंजीरें हैं, पाँव में जंजीरें हैं, दरवाजा बंद है, बाहर दो चौकीदार भी खड़े हैं और उनके भी आगे दो शेरों को बिठाया गया, उधर शेर भी बैठे हैं। तो क्योंकि उनका सिक्योरिटी एकदम टाइट था कंस का वसुदेव जी के लिए, तो वसुदेव ने अपने मन में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि अगर कृष्ण बोल रहे हैं मुझे उठा कर लेके जाओ, उठाने के लिए मेरे अंदर क्षमता किधर है, हाथ में जंजीर है, पाँव में जंजीर है, क्या कर पाऊंगा, सोचा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने बोला ठीक है आपने बोल दिया ना आपका आदेश पालन करूंगा, बस हाथ में कृष्ण को पकड़ा उन्होंने, तुरंत जंजीरें टूट गए, हाथ के जंजीरें टूट गए और दरवाजा खुल गया और वॉचमैन लोग सो गए, वॉचमैन को सोना तो काम सब लोग देखते हैं, सो ही जाते हैं वो लोग, है ना। हमारे लक्ष्मीनारायण प्रभु क्या करते थे, राउंड मारते थे सुबह जपा करने के पहले, मंदिर में जाने के पहले जाकर देखते थे वॉचमैन को सो रहा है क्या है, तो धीरे से उसके ये ले लेते हैं, उसके पा ये जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको ले लेते थे, बाद में उठने के बाद देखता था किधर गया वो, किसी ने उठाया उनका। तो इस तरह से ये दोनों वॉचमैन सो गए, महामाया ने उनको सुला दिया, वो सिंह भी सो गए। जब भगवान को ऐसे एक टोकरे में उठाकर जब वसुदेव आए, तो इस तरह देख सकते हैं कि भगवान के भक्तों के लिए कुछ पाबंदी नहीं है, जिनको भगवान के आदेश के ऊपर पूर्ण विश्वास है। इससे हम लोग एक बात समझते हैं कि अगर हम गुरु के भगवान के आदेशों को पालन करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, भगवान हमारे पथ में जो भी बाधाएं आते हैं उनको निकाल देते हैं, ये बात हम सीखते हैं। इस तरह जब कृष्ण अवतरित होते हैं कंस के जेल में, पूरा जेल में लग रहा है कि मानो कोई ट्यूबलाइट लगा दिया हो, इतना रोशनी छा जाता है। देवकी बोल रही है अपने पति को वसुदेव को, देखिए बच्चे के शरीर से कितना ब्रह्म ज्योति का कांति निकलता है भगवान के शरीर से। तो बोलती है कि इस लाइट को देकर कोई वॉचमैन जाकर संदेश ना दे दिया जाए, अगर वो संदेश दे देंगे राजा को तो क्या होगा हमारा हाल, ऐसे वो डरती है। तो इस तरह जन्माष्टमी के समय भगवान अवतरित होकर इस दुनिया में सब लोगों की कल्याण प्रदान करने के लिए और भक्तों की सुरक्षा के लिए और भक्तों को बचाने के लिए और भक्तों को अपना प्रेममय लीलाओं का आस्वादन करवाने के लिए और असुरों का ध्वंस करने के लिए और इस दुनिया के सब लोगों को शिक्षा छोड़कर जाने के लिए गीता के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। हम एक हफ्ते के बाद हम लोग मनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी हमारे मंदिर में। आप लोग इस अवसर पर अनेक लोगों को मंदिर में लाकर संपर्क कराइए, जोड़िए। और ये जन्माष्टमी बहुत अच्छा मौका है नए लोगों को जोड़ने के लिए। लाखों लाखों लोग आते हैं मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की।